శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఆప్ ఔర్ హమ్ సభీ దో తిన్ దినో సే విశేష ఇస్ ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన్ కే నిత్య నయ నయ విచార్ సున్ రహే హే, సమజ్ భీ రహే హే, అనుభవ్ భీ కర్ రహే హే. ఔర్ इस अनुभव करने का अभ्यास हम अगर जारी रखेंगे तो अवश्य ही जीवन में आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ाते जाएंगे, तत्परिणाम आत्मतृप्ति, आत्म आनंद का अनुभव करेंगे. अगर इस अभ्यास को जारी कर रखने में हम असफल होंगे तो अवश्य ही माया व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, वैभव के रूप में बार बार हमें हराने की कोशिश करेगी और उसके परिणाम जीवन में दुख, अशांति, अतृप्ति का अनुभव करते जाएंगे. जीवन हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा. इसलिए आप सभी से हम एक निवेदन अवश्य करना चाहते हैं कि नित्य आध्यात्म के कोई न कोई विचार का, ज्ञान के विशेष एक अनमोल रत्न का चिंतन मंथन आप करेंगे तो अवश्य ही विचार शैली बदलेगी, हमारा दृष्टिकोण हमारा बदलेगा, शब्द हमारे बदलेंगे, बोल कर्म तथा व्यवहार हमारा बदलता जाएगा. ज्ञान तो सभी के पास है लेकिन उसको जीवन में धारण करने में हम कई बार पास होते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, जिस कारण ही जीवन में हार का अनुभव करते हैं. इसलिए किसी दार्शनिक ने बहुत ही सुंदर अपना विचार प्रकट किया है कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है. आनंद स्रोत मन सोर्स ऑफ ब्लिस, आनंद का सागर तेरे पास है फिर भी उदास है. क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि हम माया के दास बन जाते हैं. जब माया के दास बन जाते हैं तो नेचुरली हम उदास हो ही जाते हैं. इसीलिए वो पूछता है, अपने आश्चर्य प्रकट करता है कि अचरज की बात है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है. आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, जानता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब जानता है. फिर भी मनुष्य अनजान बन जाता है, बेसमझ बन जाता है, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है. इसलिए जीवन में विफलता का अनुभव करता है और दुखी अशांत भी होता रहता है, दूसरों के साथ भी उसी का लेन देन करता है. तो नेक्स्ट थर्ड लाइन में डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है वो दार्शनिक कि जरा ज्ञान चक्षु खोल के तो देख, जिसकी तुझे तलाश थी वो तेरे पास है. ज्ञान चक्षु खोल के तो देख. इन दो चक्षुओं से तो हम दुनिया को देख रहे हैं लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद करके रखते हैं. इसलिए हमारे ही अंतर्य में जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो शक्तियां है उनको पहचान नहीं पाते हैं. इसलिए बहुत ही सुंदर विचार अपना प्रकट करते हैं वो जरा ज्ञान चक्षु खोल के तो देख, जिसकी तुझे तलाश थी। क्या ढूंढ रहा था तू संसार में, जिसके खोज में तू निकला था, वो तेरे पास ही है, तेरे अंदर है, उसको देख। और उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें अवश्य चाहिए अध्यात्म। इसीलिए वो तेरे पास है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही एक अपना उच्च विचार प्रकट करते हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा ओरिजिनली मूलतः डिवाइन, दैवत्व से संपन्न है। लेकिन उस दैवत्व को न पहचानने के कारण हम खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी बनाते रहते हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा या आध्यात्म ज्ञान या आध्यात्म विद्या वो काम करती है जो हमारे आंतरिक शक्तियों को, गुणों को, दैवत्व को उजागर करती है। इसलिए आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो जो आपका भाग्य आपको यहाँ तक ले आया है। आप सभी ऐसा समझते हैं? समझते हैं? कौन कौन समझते हैं? सभी समझते हैं। धन्यवाद बहुत को। क्यों? क्योंकि कहा जाता है वहां भी दुनिया में, दाने दाने पर खाने वालों का नाम। यहाँ भगवान के घर में, परमात्मा अवतरण भूमि में, वरदान भूमि में हर दाने पर आपका नाम लिखा हुआ था, पानी के बूंद पर आपका नाम लिखा हुआ था, सो आपको यहाँ तक ले आया। अगर इस भाग्य को जारी रखना चाहते हैं, भाग्य के रेखा को लंबा खींचना चाहते हैं, तो ये काम करना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है? करेंगे? करेंगे? तो वापस जाकर इसको कंटिन्यू करना, जो टाइम टेबल है इस योगी जीवन का, आध्यात्म ज्ञान के विद्यार्थी का, इसको कंटिन्यू करना जरूरी है। क्यों? आत्म ज्योति तो जग गई, लेकिन इसमें तेल या घी डालना भी जरूरी है। उसको अगर आप जगा कर ही रखना चाहते हैं, कौन कौन कंटिन्यू करेंगे? सभी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो पर्दे के पीछे अपना सेवाएं दे रहे हैं, आपके खुशी के लिए, आपके जीवन के शांति तृप्ति आनंद के लिए हजारों पर्दे के पीछे भी सेवाएं दे रहे हैं। स्टेज पर तो चार पांच एक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन पीछे कर रहे हैं ना, अपना तन मन धन द्वारा, समय श्वास संकल्प द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सबकी ओर से उन सभी भाई बहनों को भी मैं अवश्य धन्यवाद करती हूँ। मुख्य, हम सभी दो तीन दिनों से इस ज्ञान के चिंतन में, पहले सत्र में हम सभी ने सुन लिया कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। आना तो हो गया, जाना सामने है, लेकिन आना और जाना, इन दो किनारों के बीच में मेरा जीवन, मेरा जीना, कैसे मैं श्रेष्ठ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, यह भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई। उसके बाद इस जीवन यात्रा में मेरे साथी सहयोगी, आगे बढ़ाने वाला पंडा कौन है, ये भी आपने ठीक यथार्थ रीति समझ लिया। क्योंकि लाइफ इज ए जर्नी, यह एक जर्नी है, यात्रा है। इस यात्रा में वो ही एक साथी भी है, वो ही सहयोगी भी है, वो ही हमारा मार्गदर्शक पंडा भी है। जैसे जैसे वो मार्ग दर्शाता है, उसके कृपा आशीर्वाद में हम अगर कदम आगे रखेंगे, तो फेल्योर कभी भी जिंदगी में हम अनुभव करेंगे ही नहीं। और इसी यात्रा को हम कहते हैं राजयोग। वो भी आपने कल पूरा जान लिया, अभ्यास भी कर लिया। जानकारी होते हुए भी मनुष्य कई बार उसको प्रैक्टिकली जीवन में इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है, जिस कारण जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए फिर भी दुखी होता रहता है। आजकल आप सभी जानते हैं इस सत्य को भी कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, मास्टर डिग्री भी ले रहे हैं, लेकिन जीवन का मास्टर न बनने के कारण, अपने मन का मास्टर न बनने के कारण अवश्य ही डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स में मास्टरी ले रहे हैं, फिर भी दुखी दुखी, अशांत अशांत, फेलियर फेलियर, गुलामी का अनुभव कर रहे हैं। कभी प्रकृति का गुलाम बन जाता है मनुष्य, कभी व्यक्ति का गुलाम बन जाता है, कभी मनुष्य वस्तु वैभव का गुलाम बन जाता है। लेकिन राजयोग, इंद्रियों पर प्रभुत्व, अपने मन बुद्धि पर प्रभुत्व, प्रकृति पर प्रभुत्व और सर्व के दिलों पर राज करने की कला सिखाती है। इसलिए अवश्य ही हमें यह अभ्यास जारी रखना आवश्यक है। आज हम सब्जेक्ट के मास्टर बन रहे हैं अवश्य, लेकिन मन को कैसे हम मास्टरी, मन पर कैसे हम प्रभुत्व पाले, यह हम यहाँ विशेष अभ्यास करते हैं। यह एक दिन का काम है, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास अति आवश्यक है। क्यों यह आध्यात्म ज्ञान आवश्यक है? क्योंकि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। हम सभी अन्य कलाएं सीख गए, उड़ना भी सीख गए, तैरना भी सीख गए, लेकिन मनुष्य मनुष्य बनकर मानवीयता से मनुष्यों के साथ जीना भूल गए। इसीलिए हमारा सिनेमा क्षेत्र, आप सभी भी जानते हैं, 1950s में जो फिल्म्स आए उसमें थोड़ी बहुत कहानी होती थी, जीवन का कोई ना कोई पहलू वहां डायरेक्टर प्रोड्यूसर दर्शाता था। सात्विकता थोड़ा बहुत होती ही थी, दर्द दुख सुख ये सभी दृश्य उसमें दिखाता था कोई ना कोई रूप में उस कहानी में। लेकिन 1980s में जो फिल्म्स आए उसमें राजसिकता भर गई, जैसे जैसे मनुष्य का दृष्टिकोण, वृत्ति, व्यवहार बदलता गया, वहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा दिखाने लगे। लेकिन अभी 2000 क्रॉस कर दिया सिनेमा क्षेत्र, उसमें तामसिकता ज्यादा है, व्यक्ति भौतिकता की ओर ज्यादा जा रहा है, ज्ञान सत्य न्याय धर्म से दूर हटता जा रहा है, वो हम उसमें देखते हैं। तो आप सभी ने भी गीत सुना होगा, सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान कितना बदल गए। मेरे से होशियार हो आप सब, है? कुछ भी नहीं बदला प्रकृति के, न सूर्य न चांद न आसमान, लेकिन मनुष्य कितना बदल गया, कितना बदल गया। मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो गया है आजकल। इसीलिए कहा जाता है, नगरी तो वही है, नजारे बदल गए, साथी तो वही है, सहारे बदल गए, हम तो वही है, हमारे बदल गए। इस रंग बदलती दुनिया में सब संबंध, रिश्ते, नाते सब बदलते जाते हैं, हम वहां के ही वहां रह जाते हैं। नहीं, पहले जमाने में अगर बच्चों को पूछा करते बड़े कि बेटा तेरे को क्या बनना है, तुरंत बच्चा उस समय जवाब देता था, मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, अरविंदो जैसा बनना है। लेकिन अभी आप अपने बच्चों को पूछेंगे तो क्या कहेगा बच्चा, क्या बनना है? हंसते हैं, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तुम्हें क्या बनना है? सिनेमा हीरो। हाँ। अभी विवेकानंद अरविंदो का जगह देवानंद ने ले लिया और देवानंद का जगह बहुत आनंदो ने ले लिया। सत्य यह है, सिनेमा क्षेत्र में जिसको इंटरेस्ट है उसके हीरो हीरोइंस आज आदर्श है, पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है उसके लीडर्स उनके लिए आदर्श है, अगर खेलकूद में इंटरेस्ट है तो उसके लीडर्स बच्चों के आदर्श है, वैसे ही स्टाइल करेंगे, हेयर सेटिंग करेंगे, ड्रेस पहनेंगे, वैसा बनने का कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन में कैसे हम श्रेष्ठता, दिव्यता, गुणों से भरपूर हम जीवन को कर सकते हैं, इससे मनुष्य हटता जा रहा है। पहले जमाने में घरों में देवी देवताओं के चित्र रहा करते थे, माँ बाप बच्चों को सिखाते थे, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, नमस्कार करके तुम अध्ययन करो, विद्या अभ्यास करो, तुम यह है पद्धति, यह प्रार्थना है, यह भजन है, यह पूजा है, सब सिखाते थे। लेकिन अभी बड़े ही टीवी चैनल चेंज करते बैठेंगे तो क्या बच्चे सीखेंगे? पहले जमाने में बच्चों को नाम रखा करते थे, गीता, गायत्री, सीता, सावित्री नाम रखते थे, लेकिन अभी बच्चों को क्या नाम रखते हैं? चिंकी, मिंकी, डिंकी, पिंकी नाम रखते हैं। और वो कुत्ता जो पालते हैं उसको भी सेम नाम, और बच्चा जो है उसको भी सेम नाम रखते हैं। मिंकी आ करेंगे तो बच्चा भी आएगा, कुत्ता भी आएगा, दोनों साथ साथ आएंगे, तो सूर्य न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया या नहीं बदल गया? इंसान बदल गया। इंसान जब इंसान बदल जाता है, अपने ही स्वार्थ के कारण उसकी विचार शैली बदल जाती है, दृष्टिकोण, शब्द, कर्म, व्यवहार बदल जाता है, अपने पराये बन जाते हैं, तब दूसरा गीत गाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा। क्यों दोस्त दोस्त ना रहा? क्यों? क्योंकि प्यार प्यार ना रहा, स्वार्थ आ गया बीच में, इसलिए प्यार प्यार ना रहा। जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, वो कोई ना कोई कारण से विरुद्ध पक्ष के लीडर बन जाते हैं, तब गीत गाते हैं दोस्त दोस्त ना। जब दोस्त दोस्त ना रहता है, मित्र शत्रु बन जाता है, तब हम दुखी हो जाते हैं और तीसरा गीत गाते हैं। कौन सा तीसरा गीत गाते हैं? देख तेरे संसार का हालत। बस क्यों? उस समय भगवान देखने आएगा क्या? आएगा? आएगा? किसी को अब तक देखा है ऐसे केस में? कभी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि तब तक हमने उसको देखा ही नहीं, तो क्यों वो अब हमें देखने आएगा? अगर हम थोड़ा थोड़ा उसको देख कर रखते तो वो भी थोड़ा थोड़ा देखेगा, लेकिन हमने अब तक उसको देखा नहीं, इसको ही हमने सर्वस्व माना, और ये अभी वो अपोजिट पार्टी का लीडर जब बन गया तब उसको एप्लीकेशन देंगे, तो क्या एप्लीकेशन सिग्नेचर करेगा? कभी नहीं करेगा। जब वो एप्लीकेशन को सिग्नेचर नहीं करेगा, तब और एक गीत गाते हैं। कौन सा? वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। किस काम की ये दुनिया? जो जिंदगी से खेले, जो मेरे जिंदगी से खेले, किस काम की ये दुनिया? मेरे को भी रहना नहीं है, तुम मुझे ऊपर बुला ले। क्या ऐसे केस में उसने किसी को किसी के एप्लीकेशन को सिग्नेचर किया है? किया है? कभी नहीं करेगा वो, गारंटी। आप भी लिख लेना आपके डायरी में, ऐसे केस में कभी भी वो हाँ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, जो जाना चाहता है वो जाएगा नहीं, जो जीना चाहता है वो जिएगा नहीं, ये 100% गारंटी है। आप भी जानते होंगे घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं होते हैं, 100 क्रॉस करके बैठे हुए, वो भी जाएं जाएं सोचते हैं, घर के लोग भी जाएं जाएं सोचते हैं, लेकिन वो जाएंगे ही नहीं, वो 100, 101, 102 चलता रहता है उनका। लेकिन छोटा सा बच्चा 25-20 डिग्री ले लेगा, नौकरी मिल जाएगी, सैलरी लेके घर आने वाला रस्ते में एक्सीडेंट होगा, चला जाए। ये है सृष्टि। इसीलिए जो जाना चाहता है वो जाएगा नहीं, जो जीना चाहता है वो जिएगा नहीं। तो ये फोर्थ सॉन्ग भी हमारा फेल। जब थर्ड सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग सब फेल्यूर का मनुष्य अनुभव करता है ना, ऊपर वाला इसका सुनता है, वहां रिपेयर करने आता है इस संसार को, या इसको ही खुद ऊपर बुला लेता है, तब पांचवा और गीत गाते हैं। ना उधर का उसने ठीक किया, ना इधर हमें बुला लिया, तब क्या करते हैं? तब समझौता करते हैं, एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट करते हैं उससे, क्या उस क्या एग्रीमेंट करते हैं, चलो ठीक है हमारे नसीब में हमारे तकदीर में यही लिखा हुआ है तो जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, कहां है? यही हमारे तकदीर में ये सिरदर्द के लोग ही है, हमारे गले में अंत तक यही लटके रहेंगे, तो क्या करें? ठीक है भगवान को जो मंजूर है वो हमें भी ठीक है, समझौता करेंगे, दुखी भी होते रहेंगे, रोते भी रहेंगे, चिल्लाते भी रहेंगे, अपसेट भी होते रहेंगे, सब चलता रहेगा, लेकिन ये गीत भी अंदर ही अंदर बजता रहेगा। लेकिन ये भी जब एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, ये गीत भी सहन करेंगे थोड़ा थोड़ा, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, फिर भी एक लिमिट क्रॉस करने के बाद मनुष्य उब जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तब एक और गीत गाएगा। इतना मूर्ख बनकर वो गीत गाएगा, कौन सा गीत गाएगा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया था, काहे को दुनिया बनाया, काहे को दुनिया, क्या उस सृष्टिकर्ता को, इस तुच्छ मानव को कंसल्ट करके दुनिया बनानी थी क्या? इतने ऑर्डिनरी मनुष्य को कंसल्ट करके इसके राय से दुनिया बनानी थी क्या? नहीं। लेकिन पूछना शुरू करता है, ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, अगर तू बनाता नहीं तो तेरे को भी शांति होती, मेरे को भी, तुम बनाया क्यों, प्रश्न पूछता। मनुष्य के ही मन का रिफ्लेक्शन वहां सिनेमा क्षेत्र में दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम जब आंतरिक गुणों एवं शक्तियों से खाली हो जाते हैं, तब कंप्लेंट करना, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लेकिन आध्यात्म यहाँ हमें यह सिखाता है कि कंप्लेंट करने वाला कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चन करने वाला कभी भी, प्रश्न करने वाला कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं होता। इसीलिए प्रश्न न नाटक के कोई भी सीन के लिए हम कर सकते हैं, न कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मालूम है नाटक को किस मोड़ पर ले जाना, हम ऑर्डिनरी एक्टर्स है। लेकिन हमें यह ध्यान पर रखना जरूरी है कि मेरा एक्ट कैसे अच्छे से अच्छा मैं बना सकूं, बना सकती हूं, और मुझे उसके लिए करना क्या है, और जो भी इस नाटक में मेरे पार्ट को देखेंगे वो दिल से कहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, यह मेरा पार्ट हो, यह मेरा एक्ट हो। ऐसे हम हमेशा हमारे जीवन के सामने लक्ष्य रखेंगे तो अवश्य ही वो जीवन धन्य धन्य है। इसके लिए हमें चाहिए अपने आप में शक्तियों एवं गुणों से भरपूर करना। आप सभी इस वास्तविकता को भी जानते हैं कि 50-100 साल पहले भारत में ब्यूटी पार्लर्स का नाम निशान नहीं था। थे क्या राजस्थान में ब्यूटी पार्लर, यूपी में, बाकी अन्य राज्यों में कहां भी ब्यूटी पार्लर 50-100 साल में थे ही नहीं, भारत में थे ही नहीं। लेकिन आज हम जानते हैं छोटे छोटे गांव में नहीं, गली गली में भी ब्यूटी पार्लर है, केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांव में गली गली में आज ब्यूटी पार्लर्स है। क्यों? क्यों? क्योंकि मनुष्य को बाह्य सौंदर्य बढ़ाने का शौक बढ़ गया, न कि आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाने का। लेकिन यहाँ हम विशेष यह अभ्यास करते हैं, हमारे आंतरिक सौंदर्य को हम कैसे बढ़ाए, आत्मा को कैसे हम सजाए गुणों से शक्तियों से, हम कैसे आत्मा को सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर बनाए, परिवार को सुंदर बनाए, समाज को सुंदर बनाए, देश और विश्व को हम कैसे सुंदर बनाए, यह हमेशा अगर चिंतन चलेगा तो नेचुरली सुंदर ही सुंदर यह सृष्टि यह संसार हमें दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आप और हम सभी इस सत्य को भी जानते हैं कि बाह्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए वहां बहुत सारे कॉस्मेटिक्स सौंदर्य के साधन मिल रहे हैं, नहीं? एक स्नो पाउडर है, फेयर एंड लवली, फेयर फॉर एवर, क्या क्या मिलता है, लगा लगा कर फेयर तो बनते हैं, क्या लवली एंड लाइवली लाइफ लीड कर सकते हैं? वो लीड कर सकते हैं, वो चैतन्यता है उनके जीवन में। आप अगर गांव में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनके चेहरे कितने चमकते हैं। बॉम्बे रेलवे स्टेशन में खड़े हो जा, कितना लगाते हैं फिर भी चेहरा देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आंतरिक सौंदर्य जो है वो परमानेंट है, शाश्वत है। जीवन में दैवी गुणों से, शक्तियों से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि ऐश्वर्या रॉय कहो, सुष्मिता कहो, जो जो विश्व सुंदरियां है अभी हो गए वो सभी, हाँ सुंदर है, विश्व ने पहचाना, उनको अवार्ड दे दी। लेकिन मदर थेरेसा को भी विश्व ने पहचाना और उनको भी अवार्ड दे दिया। जब उसके सिर पर बाल नहीं थे, दांत नहीं थे, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, फिर भी उसकी आंतरिक सौंदर्य को विश्व ने पहचाना और सम्मानित किया, किया या नहीं किया? तो वैसे सौंदर्य को हमें बढ़ाना है गुणों से, शक्तियों से। तो आप सभी का भाग्य भी इस ब्यूटी पार्लर तक ले आया है, जहां स्वयं भगवान बैठ आत्मा का श्रृंगार करता है गुणों से एवं शक्तियों से। जिन्होंने वहां ब्यूटी पार्लर नहीं देखा, वो अवश्य ही यहाँ अपने आप को श्रृंगार करने का विशेष प्रयास करेंगे जरूर। इसलिए हम सभी आत्मा को सजाने का, आत्मा के श्रृंगार करने का विशेष लक्ष्य रखेंगे तो जीवन भी हमारा सुंदर बनेगा, परिवार हमारा सुंदर बनेगा, समाज हमारा सुंदर बनेगा, देश हमारा सुंदर बनेगा, सारा विश्व हमारा सुंदर बनेगा। इसीलिए आप सभी ने एक और सुंदर गीत सुना होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिखे हम, आओ लिखे हम। वहां तो उसने कह दिया एक नई समाज की कहानी, लेकिन नई समाज की कहानी के लिए हमें अपनी कहानी लिखना पड़ता है, अपनी अपनी कहानी को श्रेष्ठ लिखने का हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही भविष्य हमारा सुंदर बनेगा, समाज हमारा सुंदर बनेगा। लिखने तैयार हैं सभी? लिखने तैयार है सभी? कहानी अपनी लिखने तैयार हैं सभी? हाँ, तैयार है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, रेडी रहना अपनी अपनी कहानी। तो अपनी अपनी कहानी श्रेष्ठ लिखना अगर आप चाहते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान पर रखना, व्हेन यू बिल्ड अ हाउस ईच ब्रिक इज काउंटेड। एक मकान बनाते हैं तो हर ईंट का अपना महत्व है। व्हेन यू बिल्ड कैरेक्टर, आप अपना चरित्र का निर्माण करना अगर चाहते हैं, ईच थॉट इज काउंटेड, हर एक संकल्प का अपना महत्व है। व्हेन यू बिल्ड लाइफ, जब आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं तब ईच एक्शन इज काउंटेड, आपका हर कर्म का अपना महत्व है। हमें अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है और श्रेष्ठ को अगर हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें आंतरिक गुणों से, शक्तियों से भरपूर होना आवश्यक है। जीवन में हर कर्म से यह श्रेष्ठता दूसरों के अनुभव में आए, यह हमें अवश्य ध्यान पर रखना जरूरी है। तो एक सिंपल कहानी सुनाऊं मैं? सुना? जानते तो हम बहुत कुछ है, अगर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता से हम कोसों दूर चले जाएंगे। एक बोटमैन था, बोटमैन नदी के इस किनारे से उस किनारे तक लोगों को पहुंचाने का काम करता था। एक दिन उसके बोट में तीन पैसेंजर्स बैठते हैं। एक था हिस्ट्री का पंडित, दूसरा था जियोग्राफी भूगोल का पंडित, तीसरा था साइंस का पंडित, मास्टर साइंटिस्ट था। तीनों उसमें बैठ जाते हैं। तो पहला जियोग्राफी का भूगोल का जो मास्टर था, थोड़े ही दूर जाते ही प्रश्न पूछता है बोटमैन से, ए बोटमैन तुमको पता है लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, ये देश कहाँ कहाँ है, विश्व की नक्शा तुमने देखा है, वहां के हवा पानी का कंडीशन क्या है तुम जानता है क्या, पूछता है। तो बोटमैन कहता है नहीं साहब, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, बाकी मेरे गांव की नक्शा मैं जानता हूँ, गांव की जियोग्राफी भूगोल मैं जानता हूँ, और मेरे गांव की ही मैं हवा पानी का कंडीशन मैं जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। तो वो जियोग्राफी का मास्टर कहता है तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी गई वेस्ट, बेकार में गई, क्योंकि तुम जानता ही नहीं है विश्व क्या है, वहां क्या क्या है। बोटमैन चुप रहता है, बोट आगे फिर चालू होती है, चलती रहती। इतिहास का मास्टर दूसरा प्रश्न उसको थोड़े ही समय में पूछता है, ए बोटमैन तुमको पता है विश्व में कौन कौन से राजाएं प्रसिद्ध हो गए, विक्टोरिया रानी कौन थी, एलिजाबेथ रानी कौन थी, तुमको पता है ये कौन थे, भारत में कौन कौन से राजाएं प्रसिद्ध होकर गए, उनके राज्य में क्या क्या था, ये सब तुम्हें पता है क्या, पूछता है। तो तुरंत वो बोटमैन कहता है नहीं साहब, मेरे को ये सब पता नहीं, कौन राजा कौन रानी क्या राज्य पता नहीं, बाकी मुझे पता है मेरे गांव का ही इतिहास, मेरे बाप दादा का इतिहास मैं जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता हूँ मैं। तो इतिहास का जो मास्टर था, पंडित था, वो कहता है तुम्हारी और 1/4 जिंदगी गई बेकार। फिर भी चुप रहता है बोटमैन, फिर आगे चालू होती है बोट। तो थोड़े ही समय में वो साइंस का पंडित, साइंस का मास्टर उसको तीसरा प्रश्न पूछता है, हे बोटमैन तुमको पता है क्या, इंटरनेट क्या है, मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है, क्या क्या अभी साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट दी है, सुविधाएं दी है, ये सब तुमको पता है क्या। बोटमैन कहता है नहीं साहब, मुझे ये सब पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है मेरे बोट की क्या है टेक्नोलॉजी, मेरे बोट का क्या साइंस है, उसको कैसे मैं रिपेयर कर सकता हूँ, कैसे मैं स्क्रू को टाइट करूँ लूज करूँ, ये सब जानता हूँ मैं, बाकी सब साइंस टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है। तो साइंटिस्ट कहता है तो तुम्हारी और बाकी की 1/4 जिंदगी गई बेकार में, वेस्ट। इतिहास नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं जानता, तो तुम्हारी जिंदगी गई बेकार में, 1/4, 1/4, 1/4। तो बोटमैन चुप रहता, फिर आगे बढ़ती बोट। एकदम थोड़े ही समय में जोर सा तूफान आ जाता है, बोट हिलने लगता है, बड़े बड़े लहरें नदी में सेट हो जाते हैं, एकदम बोट डूबने जैसा हो जाता है। तो तुरंत बोटमैन पूछता है अपने तीनों पैसेंजर से, तुम लोगों को स्विमिंग आता है, तैरना आता है? तो तीनों कहते नहीं, हमको तैरना आता नहीं। तो बोटमैन कहता है तुम लोगों की पूरी जिंदगी गए बेकार। ऐसे ही हम भी बहुत चीजों का मास्टर बन गए, बहुत विचारों का भी मास्टर बन गए, लेकिन मनुष्य बनकर मनुष्यों के साथ मानवीयता से व्यवहार करना हम भूल गए। लेकिन यही है जीवन जीने की पहली कला। जीवन जीने की पहली कला में शत्रु को मित्र बनाना है, मित्र को मित्र बनाकर रखना है, और सर्व के साथ मित्रत्व निभाना है। और उसके लिए हमें अति आवश्यक है जीवन में ये अष्ट शक्तियां, जिसको हम उजागर कर सकते हैं राज योग के अभ्यास से। नित्य अभ्यास करते जाओ और दिन ब दिन इन शक्तियों का डेवलपमेंट अपने आप में अनुभव करते जाओ, यह सिखाया जाता है यहाँ विशेष अध्यात्म ज्ञान में। नित्य अभ्यास चाहिए, ऐसा नहीं कि सोमवार से शनिवार तक हम बिजी रहते हैं, इसीलिए संडे के दिन ही सातों दिन का एक्स्ट्रा खा के रखेंगे ऊंट की तरह, नहीं। नित्य खाना है, नित्य हजम भी करना है, नित्य खून बनेगा, शक्ति का अनुभव करते रहना है। तो विशेष हमें यह मेडिटेशन का भी अभ्यास करना है, ज्ञान का चिंतन मंथन भी चलना चाहिए, तो शक्तियां अपने आप अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं। मुख्य पहली शक्ति जो हम अनुभव करते हैं इस अभ्यास से, वो है सहन करने की शक्ति। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बच्चा पत्थर मार रहा है पेड़ को, फिर भी पेड़ उसको फल ही दे रहा है। ऐसे ही जीवन में विरोधी भी आएंगे, सहयोगी भी आएंगे, ज्ञानी भी आएंगे, अज्ञानी भी आएंगे, हर प्रकार के लोग हमारे साथ सामने संपर्क में आएंगे जरूर, लेकिन हर एक के साथ संबंध निभाते हुए हमें दिल से दुआएं ही उनको देना है, दुआएं ही उनसे लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति का महान उद्गार है जो आप सभी जानते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेकिन आज वो उद्गार संसार से लुप्त होता जा रहा है, मरो और मारो, मरो और मारो उद्गार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सत्य यह नहीं है। यहाँ अध्यात्म में हमें यह सिखाया जाता है कि जो तुम बोएगा उसी को तुम्हें खाना पड़ेगा फल के रूप में। अगर दूसरों को गिराकर, दूसरों को दबाकर, दूसरों के समाधि पर महल बनाकर, उस महल में सुख शांति से अगर जीना चाहेगा तो कभी भी सुख शांति से जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिर पर पानी डालेंगे वो पांव तक आएगा जरूर, 6 फुट वाले का लेट आएगा, 3 फुट वाले का जल्दी आएगा, लेकिन पानी आएगा जरूर। इसीलिए जो बीज हम बोते हैं उसका फल भी हमें ही खाना पड़ता है। अगर बीज मीठा है फल भी मीठा है, बीज कड़वा है तो फल भी कड़वा है। लेकिन वहां विज्ञान में न्यूटन ने तो एक सिद्धांत दे दिया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, कर्म इस तरफ है, प्रतिकर्म या प्रतिक्रिया अपोजिट डायरेक्शन में है, वो 1:1 रेशियो में है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। ये 1:1 रेशियो में भी नहीं है, एक बीज का एक ही फल निकलता नहीं, एक बीज का 10, 100, 1000, 1000,000 भी फल निकलते हैं। और अच्छा करो बुरा होगा, बुरा करो अच्छा होगा नहीं, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। इसीलिए भौतिक विज्ञान के नियम जीवन के विज्ञान में नहीं लागू होते हैं। तो विशेष हमें यह सीखना यहाँ है कि जितना हम सहन करेंगे उतने ही शक्ति के रूप में हम समस्याओं को स्वीकार करेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण से। सहन करना है तो सहन करेंगे, समाना है तो समाएंगे, सामना करना है तो सामना करेंगे, लेकिन जीवन में अवश्य सफल बनेंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर को हथौड़े नहीं लगेंगे तो सीढ़ी पर लगा देंगे, अगर थोड़े ही हथौड़े लगते क्रैक्स आएंगे पत्थर में तो पिलर्स में लगा देंगे, अगर पूरे हथौड़े लगने के बाद मूर्ति बन जाती है तो नेचुरली भक्त जाते हैं उसके सामने झुकते हैं। क्या डिफरेंस है, यह भी पत्थर है, वह भी पत्थर है, वह भी पत्थर है, फिर भी इस पत्थर पर मनुष्य पांव रख कर जाता है लेकिन उस पत्थर के सामने झुक जाता है। तो सहन शक्ति के सामने व्यक्ति झुकता है, इतिहास गवाह है। जो विश्व इतिहास के पन्नों में लीडर्स के लिस्ट में है, नायकों के लिस्ट में है, उन सभी ने भी सहन किया, हमसे 1000 गुना सहन किया। जो आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके चित्रों के सामने झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सहन करने की भी एक शक्ति है जो हम नित्य राजयोग के अभ्यास से डेवलप करते जाते हैं। और दूसरी है शक्ति, इसके आधार से समाने की शक्ति। मनुष्य समाज जीवी है, जंगली जानवर नहीं है, जंगल में रहने वाला नहीं है। मनुष्य को चार लोगों के साथ ही जीना है और सभी के स्वभाव संस्कारों को एडजस्ट करके जीना है। अकेला रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 के साथ, 100 के साथ, हजारों के साथ भी मानसिक स्थिति में हलचल न हो, बहुत ही प्यार प्रेम से सबके साथ अगर वो व्यवहार करेगा, अवश्य ही वो जीवन सफल जीवन है। क्यों? क्योंकि संस्कारों का रास जो व्यक्ति करेगा, अवश्य ही जीवन में वो सफल बनेगा जरूर। कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। लेकिन हम आज संसार में अगर देखें तो परिवार के सदस्य ही अपने भाई बहन को अपना नहीं समझते हैं, पराए हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पिता के हम सभी संतान हैं, एक पिता के हम सभी बच्चे हैं, तो हम सभी भाई बहने हो गए। तो कोई भी परिवार की कमी का वर्णन नहीं किया जाता है। दूसरों को भी आगे बढ़ाते हुए अगर हम खुद भी आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही जीवन में जीत हासिल करेंगे। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यतः हमें चाहिए क्षमा भाव। जितना हम दूसरों की कमी कमजोरी को क्षमा करते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे और खुद आगे बढ़ेंगे, उसमें ही समाज का, संसार का कल्याण है। इसीलिए यहाँ चित्र में दिखाया है कि समुद्र में अनेक नदियों की पानी जाती है, गंगा नदी हो, जमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, अनेक नदियों की पानी वहाँ जाती है। लेकिन समुद्र कभी भी पानी को अलग अलग नहीं करता, सब नदियों के पानी को समा लेता है। ऐसे ही हमें जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके अवगुणों को दिल पर, चित्त पर नहीं रखना है, उनको समाना है, उनको क्षमा करना है, आगे बढ़ाना है, खुद को भी आगे बढ़ना है। हम इस शक्ति को उजागर तभी हम कर सकते हैं जब हम इस विशेष महामंत्र को याद रखेंगे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जितना हम एक होकर जिएंगे उतना ही हमारे अंदर बल या ताकत मिलेगा। और दूसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी, संस्कार, स्वभाव, विचार, दृष्टिकोण में अगर हम एकता लाने का विशेष प्रयास करेंगे तो अवश्य ही कदम से कदम मिलाते हम संसार को भी आगे उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। उसके लिए बस एक महा उद्गार नित्य हमारे संकल्प से, श्वास से निकलना चाहिए कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सभी सुखी रहे संसार में, कोई भी दुख न देखे, हर एक मंगल ही देखे, यह दिल से उद्गार निकलना अति आवश्यक है। तो उसके लिए चाहिए हमें समाने की शक्ति, संस्कारों को समाने की शक्ति, हर प्रकार के स्वभाव संस्कार वालों के साथ संस्कारों को मिलाने की शक्ति, जो हम प्राप्त कर सकते हैं राजयोग के अभ्यास द्वारा। और इसके आधार से तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परख सकते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस मार्ग पर मुझे चलना है, किस मार्ग पर मुझे नहीं चलना। जैसे जौहरी असली और नकली को पहचान लेता है, सच्चा सोना और श्री गोल्ड को पहचान लेता है, ऐसे ही राज योग के अभ्यास से असली नकली को पहचान लेता है, सत्य असत्य को पहचान लेता है, किस मार्ग पर मुझे चलना है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग कनिष्ठ है, यह पहचान लेता है। पहचानने के कारण चौथी शक्ति, निर्णय शक्ति उसमें बढ़ती जाती है। योग्य, यथार्थ, निष्पक्ष निर्णय वो जीवन में ले सकता है। जो व्यक्ति इम्पार्शियल डिसीजन ले लेता है, यथार्थ निर्णय ले लेता है और समर्पक निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के आधार से जो कर्म वो करता है, वो कर्म का फल उसको कभी भी पश्चाताप करने देगा ना कभी भी उसको प्रायश्चित करने देगा। इसीलिए निर्णय करना भी अति आवश्यक है मनुष्य को। अगर जजमेंट ही नहीं कर सकता है तो कर्म क्या करेगा? कर्म क्या करेगा? अपने ही संकल्पों के आधार से मनुष्य निर्णय लेता है। एक बालाजी के मंदिर में भक्त भी खड़ा है मूर्ति के सामने, एक चोर भी खड़ा है मूर्ति के सामने, पूरा सजा सजाया है, मंदिर भी पूरा डेकोरेटेड है। चोर के मन भी विचार आएंगे, भक्त के मन में भी विचार आएंगे। भक्त के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, चोर के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? बाहर से देखने में दोनों वैसे ही स्टाइल कर रहे हैं, दोनों का एक्यूरेट है स्टाइल, लेकिन अंदर अंदर हाँ विचारों का डायरेक्शन ही अलग अलग है। जैसे वो विचार करेगा वैसे अवश्य दृष्टि में, वैसे अवश्य बोल में, कर्म में आएगा, व्यवहार उसका वैसा ही होगा। अगर व्यवहार कनिष्ठ है तो रिजल्ट भी उसको वैसा ही मिले। इसीलिए हमें जीवन में श्रेष्ठ निर्णय लेना अति आवश्यक है और यह हो सकता है तभी जब हम विचारों में पवित्रता या शुद्धि लाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जितने पवित्र हमारे संकल्प, जितने शुद्ध हमारे संकल्प, उतना ही निर्णय हमारा शुद्ध स्वच्छ होगा। बस यह यहाँ अभ्यास करते जाते हैं। विचारों में अशुद्धि, विचारों में अपवित्रता तभी आती है जब देहजन्य विचार ज्यादा है, देह के संबंध, देह के संपत्ति के संबंधित विचार अगर ज्यादा होंगे तो नेचुरली अपवित्रता या अशुद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि काम है वहाँ, क्रोध है वहाँ, लोभ है वहाँ, मोह है वहाँ, वहाँ है ईर्ष्या, वहाँ है द्वेष। इसलिए आत्मा से संबंधित विचारों का अगर सृजन ज्यादा करेंगे, परमात्मा से संबंधित विचारों की संख्या ज्यादा है तो निर्णय भी हमारा श्रेष्ठ है। तो इसके आधार से है नेक्स्ट शक्ति, सामना करने की शक्ति। अगर निर्णय श्रेष्ठ है, जीवन के हर समस्या को भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करते जाएंगे। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। मृत्यु को अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से हम स्वीकार करने में समर्थ होंगे तो सफलता ही सफलता जीवन में है। क्यों? क्योंकि जानते हैं एक दिन हमें जाना है, फिर भी जाने के टाइम रोते रहते हैं। नहीं, सत्य यह है कि अगर एक माइक सेट खरीद लेंगे, एक फैन खरीदेंगे या टेलीविजन खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, अवश्य ही उसके लिए एक गारंटी कार्ड देते हैं, 2 मास का, 6 मास का, 1 साल का गारंटी कार्ड देते हैं। इसका कोई गारंटी है? गारंटी है? कोई गारंटी है? 1 मास का, 2 मास का, 6 मास का, 1 साल का कोई गारंटी कार्ड है जिसके लिए हम पूरी जिंदगी लगा रहे हैं? जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा रहे हैं उसका एक पल का भी गारंटी कार्ड नहीं है। एक पल का भी गारंटी कार्ड जिसके लिए नहीं है उसको सब कुछ हम दे रहे हैं, और जिसको हमें साथ ले जाना है, ले जाना है, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? हमारा कर्म फल ही तो हमारे साथ आएगा भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में। उस कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है न घोड़ा है, बस हाथी मना संबंध देह के, घोड़ा माना देह से संबंधित संपत्ति। न संबंध आएगा साथ में, न संपत्ति आएगी साथ में। उसने तो कह दिया बस पैदल, ये पैदल भी नहीं जा सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी यहाँ ही खत्म करें। ले जाएंगे हम साथ में हमारे कर्म फल को। तो इस कर्म फल को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर हम हमारा समय श्वास संकल्प देंगे तो अवश्य ही श्रेष्ठ भाग्य के रूप में हम ले जाएंगे उसको हमारे साथ, और उसी श्रेष्ठ भाग्य को लेकर फिर यहाँ संसार में आएंगे। इसीलिए हमारे परमानेंट साथी है भाग्य और हमारा दुर्भाग्य। भाग्य भी संसार में, हम कहाँ भी अपने आप को छुपा कर रखेंगे तो ढूंढ लेगा, दुर्भाग्य भी हमें अवश्य ढूंढ लेगा। भाग्य दुर्भाग्य से हम अपने आप को छुपा कर कहाँ भी संसार में रख नहीं सकते, दोनों ढूंढ लेंगे। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्य की रेखा को खींचना अति आवश्यक है, और वो हम खींचते हैं तभी जब जीवन के अंतिम सत्य को यथार्थ रीति समझ जाएंगे। इसीलिए भगवत गीता में बहुत ही सुंदर रीति से गुरु के रूप में कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को सुनाता है, समझाता है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नमानि देहि। अर्थ इतना ही है, जैसे शरीर अगर मैले हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उस वस्त्र को छोड़ते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी इस जर्जरित शरीर रूपी वस्त्रों को छोड़ती है और नया वस्त्र ले लेती है। इसके लिए रोना धोना भी क्यों? बस यह है सत्य। फिर भी मनुष्य इसलिए रोता है, इसलिए दुखी होता है क्योंकि भविष्य की जानकारी उसको नहीं है, ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि मैंने इतना सब कुछ कमाया, अभी यह सब छोड़कर मुझे जाना है। तीसरा, आगे मेरे साथ कौन है साथी, कंपेनियन मेरा कौन है, ये जानकारी नहीं है। और चौथा कारण है भय है, अरे इतना सब मैंने किया, अकेला मुझे जाना है और रास्ते में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सब छोड़कर जाना है, मैंने मेहनत किया और ये लोग सुख भोगेंगे, इसीलिए भी दुखी होता रहता है। लेकिन सत्य यह है कि मरने वालों के लिए रोने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, सत्य यह है। लेकिन मरने वाला तो मर गया, उससे जो जो प्राप्तियां मुझे थे वो सब मेरे बंद हो गए, आगे मेरा क्या सोच सोच कर मनुष्य रोएगा, न कि मरने वाले के लिए। इसीलिए इस सत्य को अगर जान जाएंगे तो रोना भी नहीं, दुख भी नहीं, अशांति भी नहीं, भय भी नहीं, यह हम यहाँ सीखते हैं। सिंपल उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बच्चा माँ की गोदी में है, रो रहा है, माँ अगर कहेगी बेटा तू थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं भी रेस्ट करूंगी, या तो तू खेल ना, मैं खाना खा लूंगी, तो क्या बच्चा उतरेगा माँ की बातें सुनकर? नहीं उतरेगा। और अगर मामा काकी चाची जो भी है वहां बच्चे को थोड़ा जबरदस्ती खींचना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, और जोर से बच्चा रोएगा, बिल्कुल माँ की गोदी से उतरेगा नहीं। वही बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, तो उस समय बच्चा फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, अगर माँ अंदर से बुलाएगी और कहेगी बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा दूध तो पी ले, तो बेटा आएगा क्या? आएगा माँ के बुलावे पर? नहीं आएगा। उस दिन बड़ा हो जाएगा, 5-6 साल में इतना बड़ा हो जाएगा और माँ को सिखाना शुरू करेगा, कहेगा माँ तुम देखती नहीं हो क्या, मैं फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज, अगर तुम बिजी हो, तुम्हें अगर कोई काम है अपना काम कर लेना, मैं खुद अपने आप आकर पी लूंगा। बस और बड़ा हो जाएगा, कॉलेज जाएगा, डिग्री भी लेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, करते करते वहां भी एक गर्लफ्रेंड उसको मिल जाएगी, फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाएगा। तो सोचेगा एक दिन मैं इसको चलो घर ले जाऊं, मां से मिलाऊं, घर भी दिखाऊं। आएगा पहले, लड़की को ले आने के पहले माँ को सब इंट्रोडक्शन देगा, माँ वो ऐसे है ना, वैसे है ना, क्या है ना, कैसा है ना, सुंदर है ना, सुशील है ना, क्या क्या है ना, सब देगा। फिर कहेगा माँ उसको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये भी उसको बहुत पसंद है। तीसरे पैराग्राफ में कहेगा माँ तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो बनाने में, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये सब बनाना। लेकिन फोर्थ पैराग्राफ में वो ये रखेगा कि माँ जब मैं उस लड़की को ले आऊंगा तब तुम बाहर नहीं आना। माँ पूछेगी क्यों, कहेगा माँ वो एकदम मॉडर्न है, वो एकदम अप टू डेट है, अगर वो तुम्हें देखेगी तो वो क्या समझेगी मेरे बारे में, तुम तो इतना ओल्ड मॉडल हो पहले ही, ओ मेरे बारे में रॉन्ग इम्प्रेशन रहेगा उसका, इसलिए प्लीज उस समय तुम बाहर नहीं आना, प्लीज बाद में मैं सब संभालूंगा। क्या संभालेगा, शादी करके ले आएगा, ले आएगा, दोनों में थोड़ा विचारों में डिफरेंस होगा तो नेचुरली क्या चालू होगा, तू-तू मैं-मैं स्टार्ट। जब तू-तू मैं-मैं स्टार्ट होगा तो किसके पक्ष में खड़ा रहेगा, किसके पक्ष में खड़ा रहेगा, हाँ आप सभी किसके पक्ष में खड़े थे, हाँ किसके पक्ष में खड़े थे, कितने मामा के पक्ष में खड़े थे, हाथ उठाए जरा देखे तो सही, इधर नहीं बैठे हैं क्या, सोचना थोड़ा, इधर बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं उठाना, रोटी नहीं मिलेगी वहां, हाँ? जीवन साथी के पक्ष में ही खड़े होंगे, क्योंकि साथी तो वो है ना जीवन के, सपोर्ट तो उसको ही देना है। तो चार दिन सहन करेंगे, पांचवा दिन सीधा बोलेंगे माँ देखो तुम दोनों प्यार प्रेम से नहीं रहेंगे, मुझे टेंशन करेंगे तो मैं दूसरा घर, दूसरा घर, बस वो भी सच है, वो दिन भी सच है जब गोदी से उतरने रो रहा था, आज के दिन भी सच है जब दूसरा मकान माँ को छोड़ के बनाने का सोच रहा है, ये भी सच। चलो फिर भी माँ माँ है, एडजस्ट कर लेगी, लेकिन बुढ़ापा है, साथ में बीमारी है, बेड रिडन है, बीमार भी है, कौन करेंगे सेवा। फिर आएगा बेटा, कहेगा प्यार से माँ उधर भी बहुत अच्छा देखभाल करते हैं, इधर भी कौन करने वाला है, तुम्हारा उसका तो बनता नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं नौकरी में बिजी हूँ, इसीलिए तुम चिंता नहीं करना, पैसे की जिम्मेवारी मेरी है, बाकी उधर बहुत प्यार से करेंगे, मैं भी आता जाता रहूंगा, हा ना में उठा के ले जाएगा, वहां भर्ती करके आएगा, कहां बस जानते हैं सभी है? भर्ती करके आएगा, सैटरडे भूल जाएगा, संडे भी भूल जाएगा, सब डेज भूल गए, एक दिन वहां से टेलीग्राम आएगा मदर सीरियस स्टार्ट इमिडिएटली, चलो जा रही है सोच के सबको लेके वहां जाएगा, जाएगा एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कुछ आगे पीछे हो नहीं रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा, पूछेगा डॉक्टर क्या है ये, डॉक्टर कहेगा ये कोमा है, हाँ छह मास तक रहेगी रहेगी, नहीं तो अभी जाएगी जाएगी, कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या बेटा सोचेगा, क्या सोचेगा बेटा, क्या सोचेगा, आए थे सब वहां सेटअप करके, इधर पूरा होता तो पूरा ही करके ही जाते, फिर जाना फिर आना, कितना फिर सेटिंग करना, सोचेगा या नहीं सोचेगा। संसार का हर एक व्यक्ति यह सोचेगा जरूर, इसका कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, जिसने पूरी जिंदगी दी उस बेटे के लिए, आज उसके साथ क्या आ रहा है, सोचने की बात यह है। इसीलिए जाना तो है, ये तो गारंटी है, लेकिन जाने के पहले जीना मुझे कैसे सेटअप करना है वो मेरे हाथ में है, व्यक्ति के लिए, स्वार्थ के लिए या उद्धार के लिए संसार के, ये मेरे हाथ में है। इसीलिए जीवन उसका ही श्रेष्ठ है जो हर पल हर श्वास संसार के उन्नति के लिए देता है। संसार से अपेक्षा न करते हुए अगर समाज को हम देंगे, अवश्य ही संसार, अवश्य ही समाज हमारे सामने झुकेगा जरूर। और उसके लिए चाहिए नेक्स्ट शक्ति, सहयोग की शक्ति। वहाँ भागवत में तो दिखाया है कि सर्व के अंगुली के सहयोग से पहाड़ी को उठाया, लेकिन यहाँ हमें उठाकर फेंक देना है हमारे कलयुगी स्वभाव संस्कार को, वृत्ति को, व्यवहार को। जब हम कलयुगी असुरी स्वभाव संस्कार वृत्ति व्यवहार को उठाकर फेंक देंगे तो नेचुरली संसार यही स्वर्ग बनेगा, सुखी बने। तो सर्व के सहयोग से यह काम अवश्य ही संभव है। इसीलिए यहाँ इस संस्था का मुख्य स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हर एक व्यक्ति व्यक्ति अपने अवगुणों को, कमजोरियों को, असुरी वृत्ति व्यवहार को परिवर्तन करेगा तो व्यक्ति परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से समाज परिवर्तन। यह हम विशेष यहाँ अभ्यास करते हैं राजयोग में। उसके बाद है संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुआ दिखाया गया है। कछुए की मुख्य विशेषता है अगर कोई डेंजर सामने उसको महसूस होगा तो अपने सर्व इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को अंदर खींच लेगा। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति, योग अभ्यासी, अध्यात्म साधक कर्म इंद्रियों की जब कर्म क्षेत्र में जरूरत है तब यूज करेगा, अगर जरूरत नहीं है तो उनको अंदर खींच लेगा और अपने आप को सुरक्षित रखेगा। कोई भी प्रकार का विघ्न, परीक्षा या डेंजर उसको महसूस ना हो, ऐसे अपने आप में एक कवच योग का धारण करेगा और उसी में अपने आप को सुरक्षित रखेगा। यह है संकीर्ण करने की शक्ति, योग अभ्यास से यह साधक प्राप्त करता जाता है। और लास्ट में है समेटने की शक्ति। और समेटने की शक्ति में बोरी बिस्तर रेडी रखा है, ऐसे ही हमें भी रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है। अचानक ही हमें कॉल आ जाएगा ऊपर से जाने के लिए, रिजर्वेशन टिकट होते हुए भी कभी कभी इमरजेंसी कोटा में जाना पड़ता है। अभी तो 5 दिन इमरजेंसी का बना दिया है। क्या 5 दिन की कोई इमरजेंसी है क्या? उसको इमरजेंसी कहते हैं क्या? 5 दिन में क्या होने वाला है क्या पता, लेकिन यहाँ अचानक होने वाला है। यह जीवन यात्रा अचानक ही पूरी होने वाली है हमारी, इसलिए रेडी रहना है। रेडी रहने के लिए एक बात ज्यादा बोझ न हो, लाइट लगेज, कंफर्टेबल जर्नी। इस जीवन यात्रा में जितना कम है लगेज उतनी हमारी जीवन यात्रा कंफर्टेबल रहेगी। वहां भी यात्रा करते हैं 10-15 लगेज बना देंगे तो हर स्टेशन में गिनती करना पड़ता है 1, 4, 5, 10, 15। अगर एक ही बैग है तो सिर के नीचे रखेगा, शांत सो जाएगा। 15 लगेज है तो इधर उठाते उधर उठाते कौन लेगा कम। ऐसे ही इस जीवन की यात्रा में भी अगर बहुत विस्तार करके हमने बैठा है तो दुखी अवश्य होंगे, इसलिए हमें आवश्यक है इस लगेज को कम करना। लगेज मेन है हमारे ही विकर्मों का, विकल्पों का। जो विकर्म विकल्पों का बोझ लेके हम घूम रहे हैं संसार में, उसको योग अभ्यास से भस्म करना है। जितना हम विकर्म विकल्पों का बोझ भस्म करेंगे योग अभ्यास से, उतना ही हल्केपन का हम अनुभव करेंगे, बोझ मुक्त जीवन हमारा होगा। बोझ वाला उड़ नहीं सकता, भारी वाला भी उड़ नहीं सकता। हल्का हम खुद होंगे, बोझ से भी हम मुक्त होंगे तो सहज ही हम उड़ सकते हैं। यह है लास्ट शक्ति जो हम इस राजयोग के अभ्यास से डेवलप करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी माताएं भी जानते हैं कि हलवा बनाना है तो सब मिक्स करके रखेंगे कढ़ाई में, आटा डालेंगे, चीनी डालेंगे, तेल या घी डालेंगे, ऑन करेंगे, हलवा बन गया, कब वो ऑफ करेंगे, क्या है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक फर्स्ट तो सिग्निफिकेंस है वो कढ़ाई छोड़ता जाएगा, दूसरा तेल या घी जो एक्स्ट्रा डाला है वो भी छोड़ता जाएगा, तीसरा हल्का होता जाएगा, चौथा है गुण, खुशबू आती जाएगी। ये चार क्वालिटीज है, जब हम उसको ऑफ करते हैं और समझ लेते हैं कि हलवा बन गई। ऐसे ही यह जीवन भी संपन्न और संपूर्ण तभी बनेगा, परिपक्वता तभी आएगी जब हम देह के संबंध से अपने आप को डिटैच करते जाएंगे। कोई भी लगाव नहीं, कोई भी प्रकार का झुकाव नहीं, कोई भी प्रकार का तनाव नहीं, कहां भी कोई खींच नहीं, न देह के, न संपत्ति के, न संबंध के, सब खींच से हम अपने आप को जब छुड़ा देंगे तब फर्स्ट स्टेज में हम पास हो गए। जब छुड़ा देंगे सेकंड स्टेप में है हल्केपन का अनुभव, विकर्म विकल्प भस्म होते जाएंगे, योग अभ्यास से हल्केपन का अनुभव हम करेंगे। और तीसरे स्टेप में है तेल या घी निकलना, माना जो भी हमने जन्म जन्मांतर पाप किया है वो भी भस्म होते जाएंगे। जितना जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ हम उतारते जाएंगे उतना ही तेल या घी का अंश जो है वो निकलता जाएगा, हल्कापन का अनुभव करेंगे, बोझ से हम मुक्त हो जाएंगे। और चौथा गुण है खुशबू या सद्गुणों का सुगंध फैलता जाएगा हमारे व्यवहार से, ये है खुशबू। ये चार गुणों में जब हम पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट हम खुद लेंगे और दूसरे भी हमें सर्टिफिकेट लेंगे देंगे, तो अवश्य ही जीवन हमारा कला संपन्न जीवन के लिस्ट में आ जाए। मंजूर है ऐसा जीवन? ऐसा जीवन मंजूर है? या दुखी होके रोते रोते, भाई क्या हुआ न, क्या हुआ न, क्या हुआ न, कैसा हुआ न, हा? बस एक बात याद रखना, आप अपने जीवन का रामायण किसी को सुनाने जाएंगे, कोई भी सुनने वाला संसार में है नहीं। अरे क्या हुआ ना मेरी बहू न, कैसा न, वैसा न, आप सुनाने जाएंगे कोई सुनेंगे? अरे तेरी बहू का क्या, मेरी बहू का सुन कहेंगे। पहले ही हम हमारे रामायण से थक गए, वो अपना एक रामायण सुनाएंगे डबल रामायण से, और हम थक जाएंगे, दब जाएंगे। इसीलिए किसी के सामने अपनी जीवन की दर्द भरी कहानी शेयर करने कभी नहीं जाना। मंजूर है? क्या रोते रहेंगे, अरे क्या हुआ कैसा होंगे ना। जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे, जितना महसूस करेंगे कि भगवान हमारा साथी है, ये समस्याएं आएंगे, समस्याएं जाएंगे, बातें आएंगे, बातें जाएंगे, जैसे जैसे बादल आते हैं जाते। बस अंदर से हम अपने आप में शक्तिशाली गुण संपन्न बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल उदाहरण, बहुत बड़ा पेड़ है गांव में, उसके नीचे जब खड़े हो जाएंगे तो आसमान भी नहीं दिखाई देता, पेड़ ही पेड़, बेहद वृक्ष। अगर हम गांव दूसरे जगह जाते हैं कोई शादी के लिए कोई प्रोग्राम में, वहां से हम बस में या कार में आ रहे हैं बाय रोड, वहां से भी वही पेड़ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा, यहाँ जितना बड़ा था उससे थोड़ा छोटा, बड़ा है लेकिन कंपैरेटिवली वो वहां उस डिस्टेंस से छोटा दिखाई देगा। अगर बाय चांस लंदन अमेरिका जा रहे हैं, हवाई जहाज से झुककर हम देखेंगे वही पेड़ दिखाई देगा, लेकिन लेकिन छोटा दिखाई, पेड़ वही है, देखने वाले हम ही हैं, लेकिन डिस्टेंस चेंज होने के कारण, प्रोजेक्शन चेंज होने के कारण, वही पेड़ जो यहाँ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, वहां से वो छोटे थे छोटा दिखाई देता है। ऐसे ही अगर हम गुणों एवं शक्तियों में कमजोर है, समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम आंतर्य में गुणों एवं शक्तियों से भरपूर है तो समस्या छोटे ते छोटी। सिंपल है ये फिलॉसफी। और एक और सिंपल एग्जांपल, 20-25 साल के नौजवान को जुकाम है, बुखार है, तो उसके लिए वो बड़ी समस्या नहीं है, वो आराम से ये गोली लेगा, नौकरी करने जाएगा, कॉलेज जाएगा। लेकिन वही 80 साल के बूढ़े को जुकाम है, बुखार है, तो 15 दिन सो जाएगा, वो बुखार है न जुकाम है न क्या है न क्यों। इसमें अंदर में शक्ति है, स्थूल में उसमें शक्ति की कमी, बस यही है सिद्धांत। इसलिए जीवन को कला संपन्न अगर बनाना चाहते हैं तो अपने आंतरिक में गुणों एवं शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते जाओ। कृपा मांगने की, दया मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही राज मार्ग है, राज योग का अभ्यास। जितना राज योग के अभ्यासी हम बनेंगे, उतने ही हम अपने आप में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति तथा समेटने की शक्ति को डेवलप करते जाएंगे और सफलता को जीवन में प्राप्त करते जाएंगे। संसार में सफलता ढूंढना नहीं पड़ेगा, सफलता हमें ढूंढ कर आएगी, हमारे गले का हार बन जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सर्वशक्तिवान सफलता दे, सुख दे, हर प्रकार की यश कीर्ति दे, आयु आरोग्य दे, जीवन को सफल बनाए, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना भी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम सभी उसको भी 2 मिनट शांति पूर्वक याद करेंगे, यहाँ इस सत्र को समाप्त करेंगे। इसके बाद आप सभी नाश्ता करेंगे और 9:30-10 तक यहाँ पहुँचेंगे, तो आप सबके लिए अगला सत्र रहेगा काल चक्र के बारे में। उसके बाद यज्ञ इतिहास का क्लास रहेगा, तो उसके बाद आप सभी भोजन करेंगे, रेस्ट करेंगे। शाम को तनाव मुक्त जीवन पद्धति के बारे में सुनाया जाएगा। उसके बाद कर्म की गति कितनी गुह्य है उसके बारे में सत्र रहेगा, और भोजन करेंगे रात्रि, और उसके बाद अनुभव का लेन देन तथा हमारे इस संस्था के मुख्य प्रशासकी दादी डॉक्टर प्रकाशमणि जी का एक वीडियो फिल्म दिखाया जाएगा, थोड़ा अनुभव का लेन देन भी रहेगा। ऐसे आज के दिन का पूरा कार्यक्रम रहेगा, तो आप सभी अवश्य ही इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लेंगे, हर सत्र को अवश्य ही अटेंड करेंगे। फिर से आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो के जीने की ये है कला।